तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भ्राता जी से कि विशेष आज का जो विषय है लीकेजेस इन ब्राह्मण लाइफ उस पर प्रकाश डालें, बाबा की याद से शुरुआत करेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीवन में हमने लक्ष्य क्या बनाया है। बाबा ने तो कुछ फाइनल लक्ष्य दे दिए हमें, कर्मातीत होना, संपूर्ण बनना, लक्ष्मीनारायण बनना, लेकिन इनसे काम नहीं चलता। प्रैक्टिकल में अगर देखें तो न तो किसी को ये याद रहते नहीं, इफेक्टिवली ये काम करते हैं। क्या हो लक्ष्य? किसी ने लक्ष्य बना लिया हो कि मुझे 3 मास तक रोज 4 घंटे योग करना है, इसको लक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य बना लिया हो मुझे अपने को परचिंतन से मुक्त करना है जल्दी। लक्ष्य बना लिया हो कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी को नहीं खोना है। लक्ष्य बना लिया हो मुझे अपनी प्योरिटी को शिखर तक पहुंचाना है। तो लक्ष्य के साथ प्लानिंग, लक्ष्य तब तक निष्प्रभावी रहता है जब तक उसको पाने का प्लान न हो। सुंदर, सरल, बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग में ये याद रखनी है, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। बहुत बड़ा प्लान नहीं बना देना, कभी यहां से जाते ही प्लान बना दो कल से 2 बजे उठेंगे, वो चलेगा नहीं। फिर बहुत प्रैक्टिकल प्लानिंग जो सदा चल सके, ठीक है ना ये बात। अब योग हम करेंगे, बहुत अच्छा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, संगम युग पर जिस ब्राह्मण का योग 4 घंटे नहीं है रोज, उसको जीवन का सच्चा सुख नहीं मिलेगा, बाबा की समीपता का अनुभव भी नहीं होगा। 4 घंटे कोई बैठना नहीं, आपको बैठो चाहे ना बैठो, 4 घंटे स्मृति स्वरूप स्थिति। योग बहुत लोग करते हैं, अच्छा अच्छा योग भी करते हैं ना ज्यादा, लेकिन बहुतों की स्थिति नहीं बनती। क्रोध आ रहा था तो आ रहा है अभी भी, फीलिंग आती है तो अभी भी आ रही है। ज्यादा बोलने की आदत थी 50 साल पहले, वो चलती आ रही है ऐसा ना। और चीजें, कड़वे शब्द बोलते हैं, दुख देने की आदत, दुखी रहने की संस्कार, चिंता करने का संस्कार, ज्यादा सोचने का संस्कार, चलते आ रहे हैं। क्रोध तो बहुतों का कम हो जाता है। तो लक्ष्य रखना है कि योग के साथ दिखने वाला परिवर्तन भी हो, दूसरों को भी दिखे, हमें भी दिखाई दे, विचार भी बदल रहे हों, चिंतन करेंगे इस पर। अगर योग करने के बाद हमारा जीवन नहीं बदल रहा है तो अवश्य लीकेज है। मैं बाबा का एक अति गुह्य महावाक्य सुना देता हूं। एक ही बार बोला बाबा ने, 77, तुम्हें तरेसर जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता, ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उनको नष्ट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो 100 गुना 1000 गुना हो जाते हैं ना। तो हम ब्राह्मण बनने के बाद क्या क्या विकर्म कर देते हैं जो लीकेज बन जाते हैं, आत्मा में बल नहीं भरने देते, सेवाओं को सफल नहीं होने देते हैं, संबंधों को स्वेट नहीं बनने देते हैं। हमें इन चीजों पर थोड़ा सा विचार करना, बातें बहुत कही जा सकती हैं, पर पहला कारण है व्यर्थ संकल्प। अगर संकल्प बहुत चलते हैं, आजकल व्यर्थ संकल्पों का एक और रूप हो गया है संसार में, ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कोई बात हो गई घर में, सोच ही रहे हैं सवेरे से रात तक, तब तक सोचते रहेंगे जब तक दूसरी बात ना हो जाए, फिर वो छूट जाएगी, उस पर सोचना शुरू कर देंगे। होता है माताओं में ज्यादा ये संस्कार बढ़ता जा रहा है, इससे बहुत सारी शक्तियां बहती जाएंगी। सवेरे उठ के बहुत अच्छा योग कर लो, सब नष्ट हो जाएगा। ज्यादा बोलने से शक्तियां नष्ट होती हैं, बहुत ध्यान रखना। बुरा बोलने से तो और भी ज्यादा, कटु वचन, दुखदायी वचन, कई तो दूसरों को श्राप भी दे देते हैं। बिल्कुल बोलते हैं तुम्हें श्राप देती हूं, अब सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, फिर तो कुछ भी नहीं बचता। शास्त्रों में भी ये बात दिखाई, ऋषि ने बहुत तपस्या करके अर्जित किया था, सब कुछ श्राप दे दिया, सारी तपस्या का बल नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तुरंत नष्ट हो गया। और वरदान देने से मल्टीप्लाई होगा, तेजी से बढ़ेगा, इसलिए सुखदायी वचन हमारे खाते में वृद्धि करते हैं, जमा के खाते में, और दुखदायी वचन उसको तेजी से नष्ट करते हैं। दैहिक दृष्टि, चाहे किसी में इम्प्योरिटी हो या ना हो, दैहिक दृष्टि रखने से हमारी एनर्जी नष्ट होती जाएगी। और कोई पाप कर्म कर लिया तो तेजी से नष्ट होगी। पापों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, गति गुह्य है कर्मों की गति, उस पर हम सबको बहुत ध्यान देना है। तो हम जितना जमा करें वो जमा रहे, ये हमें अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। अब सेवाएं मान लो हम कर रहे हैं, कल भी बाबा की मुरली में था, संडे की मुरली में, सेवाओं में अगर संतुष्टि नहीं, और आगे सोचें, सेवाओं में टकराव हो रहा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो सबके साथ तो उसे काम करना है लेकिन खेल बिगाड़े रखता है, टकराता रहता है, सबको डिस्टर्ब करता है, तो वहां के वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगे और सेवाओं की सफलता होगी नहीं, तो ये लीकेज हो जाएगा बहुत बड़ा। तो सेवाओं में कई लोग सहयोगी बहुत अच्छे, तो कई लोग विघ्न डालने वाले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सेवाओं के फील्ड में तो सभी कार्यरत रहते हैं। एक व्यक्ति ने सेवाओं के निर्माण में, मकान बन रहा है सेंटर का, बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, लेकिन सहयोग देखकर जब सेंटर चालू हो गया है तो वो व्यक्ति चाहता है अब बहने वैसा ही करें जैसा मैं कहूं, तो क्या होगा? उसका पुण्य नष्ट होता ही जाएगा, क्योंकि उसमें मैंपन सदा है। सेंटर की बिल्डिंग देखेगा, मैंने बनवाई है, जितनी बार देखेगा खाता माइनस जाएगा। एक भाई की कहानी सुनाऊं, ये सुंदर कहानी है। एक रिट्रीट सेंटर में मैं गया, बहुत सुंदर बना हुआ, ओडिशा। मैंने बहन जी से पूछा, बहुत बड़ा बना दिया आपने, जैसे सहयोगी कोई भाई हैं क्या यहाँ ज्यादा? तो उसने मुझे इशारा किया, देखो वो जो भाई लाइन में खड़ा नाश्ते के लिए है ना, उसने कराया सारा। मैंने कहा तो बुला तो लो, मिला तो दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी उंगली भी देख ली तो मुझे डांटेगा, क्यों बताया मेरा? उसने कहा हुआ मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं, संकल्प भी निकाल दो कि मैंने कुछ किया है। लाइन में खड़ा था नाश्ता लेने के लिए, करोड़ों लगाए थे उसने। तो इन आत्माओं का पुण्य बहुत जमा होता है, तो जहां अहम है, क्रोध है, वहां लीकेज है, मैपन है, बहुत बड़ा लीकेज है, सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करता जाता है। हमारी स्थिति में बल नहीं भरेगा, इसलिए करो और नहीं बोलो भी नहीं, याद तो रहेगा। खैर, करो और बाबा को अर्पित कर दो, तुमने ही तो दिया। अर्पित कोई भी कार्य, आपने बड़ी सेवा भी कर दी ना। देखो सूक्ष्म गति ये है, आपने बहुत बड़ी सेवा की, लोग आपकी महिमा कर रहे हैं, करेंगे जब आपने अच्छी सेवा की, इस महिमा को भी ऊपर, ये हमारी स्थिति हो जाए तो हमारा दिनों दिन जमा होता जाएगा। और महिमा को स्वीकार किया, हाँ मेरी मैंने बहुत अच्छा किया, तो मैंपन बढ़ेगा, गिरावट आ जाएगी। तो हमें सूक्ष्म दृष्टि से अपने को देख लेना है कि हम निरंतर अपने खाते को बढ़ाते चलें, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सेवाएं उन आत्माओं के द्वारा होगी जिन्होंने सर्व खजाने स्वयं में जमा किए होंगे। सर्व खजाने, नौ खजाने, भारत में नौ निधियों का गायन है, नौ खजाने, ये ज्ञान, सुख शांति का खजाना, खुशी का, पवित्रता का, पुण्य कर्मों का, दुआओं का, ये सब हमारे खजाने हैं जो हमारी स्थिति में बल भरते रहते हैं। इनको हम देते भी चलें और बढ़ाते भी चलें तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो सब यहां से जाकर एक ऐसा प्लान करना, यही कर लेना कि कुछ चीजें कंटिन्यू रहें जीवन में, कायम रहें। यहां तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसा बहुतों के साथ होता है, भाई हफ्ते तक बहुत नशा रहा, किसी को 15 दिन नशा रहा, फिर डाउन होने लगता है। डाउन तब नहीं होगा जब यहां से कुछ प्लान करके चलेंगे, और ये नहीं कि प्लान घर जाके शुरू करेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे, उसको फॉलो करना। परसों से शुरू करेंगे, 3 दिन के बाद करेंगे, 3 दिन में ढिलाई आ जाएगी, तुरंत शुरू करना, ये बाबा ने बहुत अच्छा सिखाया है हमें। तो रोज सवेरे बाबा से मिलन करना है, क्योंकि कई ऐसे आए हैं, आप भी हैं, बाहर भी हैं, जिन्होंने बाबा से अव्यक्त रूप में बाबा को देखा नहीं, कैसे आते थे बाबा, कितना सुंदर वो प्रोग्राम चलता था, तो उनको होता है। एक माता ने फोन किया मुझे 2-3 दिन पहले, भाई जी बाबा अब नहीं आएंगे। अब मैं क्या कहूं उसे, मैंने कहा नहीं आएंगे, वो पाठ पूरा हो गया, अब दूसरा चल रहा। रोने लगी, हम इतने लेट आए, हमें तो बाबा मिला ही नहीं। अगर रोज अमृत वेले मिलन का अनुभव करेंगे तो ये बात खत्म हो जाएगी, सुंदर से सुंदर अनुभव होगा। क्योंकि उस एक्सपीरियंस से जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, 10 गुना ज्यादा अनुभव बाबा दे रहे हैं आजकल, बहुत सुनाते हैं कि बाबा से ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा अनुभव मिल रहा है। तो एक सिंपल प्लानिंग, और मैं आप सबको ये भी कहूं, जो मिलने आए हैं उन सबको मैंने कही है ये बात, कोई एक विशेष परिवर्तन अपने में अवश्य कर लेना, ताकि भट्टी की यादगार रहे। और जो करना है उसे लिख लेना अपनी डायरी में, कुछ दिन तक रोज एक बार सवेरे उस पर दृष्टि डालना, ये चेंज हम कर रहे हैं। जोर से बोलने की आदत है, धीमा बोलेंगे, गुस्सा थोड़ा बहुत आता है उसे धीरे धीरे समाप्त करेंगे, परेशान भी नहीं होना कि प्रतिज्ञा कर ली आज से क्रोध नहीं करेंगे, अब वो तो आ रहा है, धीरे धीरे जाएगा। क्रोध आदि ऐसी चीजें हैं, सारे विकार कोई एक झटके में नहीं जाते, प्रोसेस है उनके पीछे, हमारी साधनाएं चलती रहें, उन पर चिंतन होता रहे, तो धीरे धीरे वो सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा, फिर क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ सुमन मैन, आ गए आपके पास। अपने विचारों को महान बनाएंगे, जिसके विचार महान है वही महान है। विचार बदलते ही हमारा जीवन बदल जाता है, विचार बदलते ही हमारा संसार बदल जाएगा। विचारों की ब्यूटी बहुत बड़ी ब्यूटी है जीवन के लिए, जिसके विचार सुंदर हैं वही सुंदर हैं। तो विचारों में चेंज करेंगे। आज तक ये सोचते थे, अब ये सोचेंगे। आज तक इस दृष्टि से देखते थे, अब इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे। आज तक बच्चों के लिए ये रहता था, अब ये रखेंगे। सूक्ष्म चेंज। बाबा की एक मुरली पढ़ रहे थे, हम आएंगे आपके पास अगले संडे को। 50 वर्ष का पुरुषार्थ 5 वर्ष में किया जा सकता है। क्यों? सब कुछ रिफाइन हो गया है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कोई कि हम तो लेट आए हैं। जिनको करना होता है वो 1 साल में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्ची बात है, केवल आपको बहलाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं। 1 साल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे भाई बहने आते हैं जो कहते हैं 1 साल ज्ञान में हुआ, लेकिन हमने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है। इसलिए निराशा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छा सभी प्लान बना के जाएंगे। बाबा की सेवाएं तो बहुत होने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि अब कौन आएगा यहाँ। हमारे यहाँ भी कई लोग सोचते हैं अब कौन आएगा। शांतिवन तो बहुत बड़ा, अब 300 आए, 500 आए, 1000 आए, लगता कोई है ही नहीं। सुनसान गलियां रहती हैं। लेकिन अभी तो जय जयकार होगी। मैं तो सबको कह दिया जिन्होंने कहा, अच्छे अच्छे लोग कहते हैं कि अभी तो 50,000 रोज आएंगे, तैयार हो जाओ उसके लिए। इसलिए जय जयकार होगी। मधुबन महान तीर्थ बनेगा। इस देव देवियां पर प्रख्यात होंगे, इसलिए खेल ऐसा चलेगा। बुरी घटनाएं, फिर शांति, बाबा की सेवाएं। फिर घटनाएं होंगी, फिर शांति, बाबा की सेवाएं। इसके पीछे लक्ष्य है ड्रामा में कि ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाना है। क्योंकि ब्राह्मण भी तब तक जोर पूरा नहीं लगाते, कब तक? जब तक थोड़ा झटका न लग जाए, पुश ऐसा जोर सा झटका लगे, फिर तेज दौड़ते हैं, जब तो दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उलझे रहते हैं। इसलिए ये ड्रामा में प्रभु जी का प्लान है, झटके भी देगा और संभालेगा भी। चलो बहन जी प्रश्न पूछ लें।
भाई जी पहला प्रश्न है, मैं एक कुमार हूँ, मैं लौकिक में कंपटीशन पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई में ज्यादा कोर्स होने के कारण मेरा ज्यादा समय पढ़ाई में जा रहा है, जिससे पुरुषार्थ में कम समय दे पाता हूँ। तो ऐसा क्या करें जिसमें पढ़ाई और पुरुषार्थ का बैलेंस रहे, या फिर ऐसे कोई विधि है जिससे कम पढ़े लेकिन नंबर अच्छे आए?
यही तो सब चाहते हैं, बिना पढ़े ही आ जाए तो कितना अच्छा हो। रोज सवेरे उठते ही 5 बार याद करना, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी मेमोरी पावर परफेक्ट है, जो मैं याद करूंगा सब याद रहेगा, जो मैं पढ़ूंगा सब याद रहेगा। ये सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। बहुत जल्दी आप अपने में चेंज पाएंगे और कम मेहनत करेंगे, याद ज्यादा रहेगा। बाकी ऐसा आप करें, पढ़ते हुए ही कुछ रिमाइंडर अपने पास रख लें और रोज 1 पॉइंट प्रोग्राम ले लें कि 8 बजे सारा दिन ये याद करना है। उदाहरण के लिए, मैं एक महान आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है, बस इतना 20 बार याद कर जाओ सारे दिन में। इसमें टाइम की तो जरूरत नहीं। स्टडी करते हुए लेबोरियस होने से अच्छा होता है बुद्धिमान होना, चित्त को शांत करना। ये फिलोसोफी आपको याद रहे, मन जितना शांत होगा बुद्धि की शक्तियां उतनी ही तीव्र होंगी। ये मन को शांत रखना। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के जो घबराहट होती है, जो नर्वसनेस आती है, उसे ब्रेन की शक्तियां छीन पड़ जाती हैं। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, ये होगा ही, बस वैसा ही हो जाएगा, इतना कर लें तो बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, कम मेहनत में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
और जिनका भी प्रश्न है तो लिख करके यहाँ दे देंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं है मेरे पास।
ठीक है, नहीं तो बिना प्रश्नों के ही करेंगे काम। कितने हैं आपके?
2 और
हैं। बस फिर जब शुरू करेंगे तो बहुत पूछेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है भाई जी कि एक पतित आत्मा जो ज्ञान में रेगुलर चल रही है लेकिन वो बाहर से सबको बताती है कि वो पवित्र है लेकिन है नहीं। वो आत्मा सेंटर में ब्रह्मा भोजन भी बनाती है तो हम वो भोजन करते हैं उससे कोई दोष हमें लगता है क्या?
ये उनकी गलती है बहुत बड़ी। उनका सूक्ष्म विकर्म बनता ही जाएगा जब तक वो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि मेरे अंदर प्योरिटी है। तब तक प्योरिटी इम्प्योरिटी है तब तक प्योरिटी आएगी भी नहीं जीवन में। इसलिए ऐसी आत्मा को बहुत क्लियर रहना चाहिए बाबा से, नहीं तो वो अपने को धोखा दे रहे हैं। रही बात आपकी, आप तो अननोन हैं उस बारे में, तो आपको न कोई दोष है न आपके ऊपर कोई इफेक्ट होगा। लेकिन बहनें भी क्या करें, उनको भी तो वही बताएगा। बहनों के पास कोई मीटर तो है नहीं जिससे नाप लें। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। और अगर आपको पता है तो आप बड़ों को थोड़ा इशारा भी दे सकते हैं, वो प्यार से कम इतना तो कहें भाई तुम ब्रह्मा भोजन नहीं बनाओ, तुम पहले अपना अच्छा पुरुषार्थ करो, ये आपका परम कर्तव्य है। किसी और भावना से नहीं, उसके कल्याण की भावना से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप भोजन खाओ तो थोड़ा अच्छा योग करके भोजन को पवित्र दृष्टि देकर फिर खाना।
बाबा से वैसा प्यार ना उत्पन्न हो रहा, वैसा प्यार उत्पन्न हो नहीं हो रहा हो जो होना चाहिए, तो ऐसा क्या करे कि बाबा से अटूट प्यार हो जाए?
मुरली चल चुकी है इस पर कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही। जितना जितना तुम आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस करोगे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा आत्मिक स्थिति से है। बाबा के महावाक्य हैं, जो जितना देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे। तो बाबा को प्यारे लगेंगे और बाबा हमें प्यारा लगने लगेगा। अपनी स्थिति को थोड़ा आगे बढ़ाते चलें। जब अपनी स्थिति अच्छी नहीं होती, संकल्प इधर उधर के ज्यादा चलते हैं, तो भी बाबा ऐसा ही लगता है कि सूखा सूखा योग कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं श्री बाबा पर, वो नहीं। अगली बात, प्यार होता है हमेशा संबंधों में, इसलिए बहुत डीपली इस बात को बढ़ाते चलें कि वो मेरा है। ये छोटी बात नहीं है। कहने में तो मेरा बाबा हम फट से कह देते हैं, लेकिन इसको रियल में, जैसे माँ अपने बच्चे को देखेगी, मान लो कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं आपके आगे से, जब आपका बच्चा आएगा चेहरा ही खिल जाएगा, कहेंगी सबसे सुंदर मेरा ही बच्चा है, भले ही ना हो, होगा या नहीं? मेरापन कैसा होता है सभी भाई बहने जानते हैं संबंधों में। बाबा से ऐसा ही मेरापन हो जाए तो अपनों से प्यार होता ही है। इस मेरेपन को बढ़ाएंगे, वो मेरा है, जिसे आज तक हम भगवान कहते थे वो तो मेरा है। देखो मैं शुरू में कैसे अभ्यास करता था इसका, वो अपना एक संकल्प बता देता हूँ आपको। मैं छतों पे घूमता था पांडव भवन में और बाबा से बात करता था, बाबा हम आपको कितना ढूंढते थे, कैसे होंगे आप, क्या क्या कल्पनाएं किया करते थे, क्योंकि मैं पढ़ता था, उपनिषद मैंने पढ़े, दर्शन पढ़े, और भी गीता तो रोज ही पढ़ लेते थे, रामायण महाभारत पढ़ते थे बचपन से, यूपी में इनका प्रचलन है। मैं इस बाबा से बात करता था, हम आपके बारे में क्या क्या सोचते थे, कैसे होंगे आप, और जब आप हमारे पास आए तो आप तो हमारे ही निकले, मजा आ जाता था सोचते ही, हमारा है वो और हमें सब कुछ देने आ गया है। तो चिंतन करेंगे प्यार बढ़ेगा। और अगली बात, क्योंकि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योग में, ये प्रेम योग भी है राजयोग, भगवान से प्यार, उसके प्यार में मगन होना, क्या क्या उससे हमें मिला है इसकी लिस्ट लिखें सभी। बहुतों की समझ में नहीं आता क्या मिला, कहा बहुत मिल गया, क्या मिला ये पता नहीं, पर बहुत मिल गया। आप उसे एक लिस्ट बनाओ, 15 बातें लिखो, बाबा से हमें क्या क्या मिला। बहुतों को ये पता नहीं कि ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज मिल गई है, ये उन्हें पता चलता है जो ढूंढ रहे थे सत्य ज्ञान को, बहुत बड़ी चीज मिली है ये ज्ञान हमें। हमारे लिए जो छोटी छोटी बातें हैं वो शास्त्रवादियों के लिए अभी तक भी खोज हैं। मैं कौन हूं कोई नहीं जान पाया अब तक, कहां से आए हैं ये तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं। परमधाम शब्द आया है, ब्रह्मलोक शब्द आया है, कुछ पता नहीं चलता। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिला, प्यार मिला, उसका साथ मिला, वो खुद मिल गया। ये तो सोचो आपको कुछ भी समझ में ना आए क्या मिला, तो भगवान मिल गया ये कोई छोटी बात है क्या? इस संबंध से देखेंगे बाबा को, उसे शुक्रिया करेंगे तो प्यार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट,
यदि योग में किसी भी तरह की विजुलाइजेशन नहीं होती तो क्या वो आत्मा सतयुगी आत्मा नहीं है?
नहीं, सतयुगी तो है, उसका सम्मान सतयुगी आत्मा, सतयुग में तो आप आओगे, निश्चिंत हो जाओ, कोई आपको सतयुग से निकालेगा नहीं। ये नहीं आप वहां गेट पर पहुंच गए और कहेंगे नहीं तुमने विजुअलाइज नहीं किया इसलिए नो एंट्री, ऐसा नहीं है। लेकिन विजुअलाइजेशन से एकाग्रता सरल हो जाती है, और जिस चीज को, जिस ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज माना देखना, जिस चीज को हम देखेंगे उसके वाइब्रेशन सब में आने लगते हैं। शिव बाबा को विजुअलाइज कर रहे तो उसके वाइब्रेशन हमको आने लगे, ये मनोविज्ञान की भी सूक्ष्म गति है। मान लो कल आपने ज्ञान सरोवर के किसी बगीचे में एक सुंदर सा फूल देखा था, अब आप उसको देखने लगो यहां से, तो आप जुड़ गए उससे, आपके वाइब्रेशन उसको पहुंचने लगे, उसके हमें नहीं पहुंचे क्योंकि हम पावरफुल हैं, हमारे उसको जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, और प्रैक्टिस में हमें याद रखना है विजुअलाइजेशन करते हैं हम थर्ड आई से, तीसरे नेत्र से, और तीसरा नेत्र कौन सा है हमारा? बुद्धि। बुद्धि को जिसने जितना स्वच्छ किया है उतना ही विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, क्योंकि हम उन चीजों को विजुअलाइज करना चाहते हैं जो दिखती नहीं है। आप चांद तारों को विजुअलाइज करो इस टाइम तो करना ईजी है क्योंकि रोज हम देखते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा हमारा देव स्वरूप हमारे फरिश्ता स्वरूप ये दिखाई देते नहीं है, इसलिए विजुअलाइजेशन कठिन होता है। बुद्धि को क्लीन करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहने से नहीं होगी। क्या क्या गंदगी हम भरते हैं वो हमारी जानकारी में हो, उसको नहीं भरनी है। अब एक अभियान चला देना यहां से जाके, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया ना, आप सब चलाना बुद्धि की स्वच्छता का अभियान, तो जितनी स्वच्छ बुद्धि होगी विजुअलाइजेशन क्लियर होगा।
परिवार में रहते जब कोई बात हो जाए उस समय हलचल में आए बिना कैसे रहे?
इसके लिए तो लंबी प्रैक्टिस चाहिए, पहले तो ये सोचना अगर हलचल हो जाए तो उसे जल्दी कैसे ठीक करें। मनुष्य को संकल्प चलते हैं, मनुष्य बुद्धिमान है, अपनों से कुछ कामनाएं भी रहती हैं, हर एक की कुछ इच्छाएं कामनाएं भी हैं, और परिवारों में कुछ ना कुछ संबंधों में होता भी रहता है, होता भी रहेगा, इसके लिए सबको तैयार रखना है अपने को। लेकिन अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और जल्दी हम उससे पार हो जाएंगे। और श्रेष्ठ स्थिति है स्वमान की, सभी अपने अपने घरों में ये अभ्यास किया करें कुछ स्वमान, और सभी को कम से कम दिन में दो बार आत्मिक दृष्टि से देखना। सब आत्माएं हैं, आप ये विश्वास पूर्वक जान लें, प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा विश्वास हो जाएगा। जब आप अपने घर में दूसरों को आत्मा देखोगे, बैठ कर देखो, आप कहेंगे सात दिन हम क्या देखेंगे, दो बार केवल आप बैठ गए शांति में, ये सब आत्माएं हैं और ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। आप तुरंत फील करेंगे आपके वाइब्रेशंस कितने बदलने लगे, घर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता आ गई। तो दो बार ये अवश्य करें और अपने को अच्छे स्वमान में स्थित करें, सबके लिए शुभ भावनाएं भी हों, कामनाएं कम हो। मान लो आपके बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, टीवी पे लगे हुए, फोन पे लगे हुए, आप बार बार उनको पढ़ने को कह रहे हैं और नहीं पढ़ते हैं तो गुस्सा आएगा, कहा सुनी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। माताओं का तो ज्यादा यही होता है, बच्चों की पढ़ाई को लेके आजकल ज्यादा संघर्ष है। तो अच्छी स्थिति में रहेंगे, शुभ भावनाओं में रहेंगे, जब हम अच्छे स्वमान में रहते हैं तो क्या होता है मालूम है, सबको याद रहे, हमारे बोल में प्रभाव रहता है। तब जब आप बच्चों को कुछ कहेंगे तो वो प्रत्युत्तर नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, मानेंगे आपकी बात। तो इस तरह पहले से अपनी स्थिति थोड़ी अच्छी करनी है। और ये बात भी सभी अच्छी तरह ध्यान दें, अगर सवेरे उठकर हम अपने को चार्ज कर लेते हैं, सवेरे उठकर मुरली से भी और योग से, तो हमें काफी बल रहता है अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए।
मेरा बिजनेस है और बिजनेस में सक्सेस के लिए मैं क्या संकल्प करूं, मेरा बिजनेस सप्लीमेंट्स का है।
अगर विघ्न आ रहे हों, जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं ये हम बहुतों से कराते हैं और सब ठीक हो जाता है, अगर बिजनेस में विघ्न आ रहे हों तो पहले 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर दें, एक घंटा रोज योग अमृत वेले के अलावा। दो स्वमान याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तीन बार ये संकल्प याद किए, फिर एक घंटा योग। अगर आपका योग अच्छा होता है तो 21 दिन के इस योग से विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संकल्प करके फिर एक घंटा योग 21 दिन करेंगे, तो ये 42 दिन एक घंटा रोज योग आपके व्यापार से, आपके धंधों से सभी विघ्नों को नष्ट कर देंगे फॉर एवर, और आपका सफलता का द्वार खुल जाएगा।
ट्रैफिक कंट्रोल के समय क्या अभ्यास करें और पुरानी स्मृतियों को जड़ से कैसे खत्म करें?
हाँ, जड़ से खत्म करना है ना, पुरानी स्मृतियां बड़ी खराब है, बहुतों को तो वो आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। बाबा का महावाक्य याद रखेंगे, अव्यक्त महावाक्य है, श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। इसलिए सिंपल पांच स्वरूपों का अभ्यास करने लगो सवेरे शाम, सारा दिन न भी करो, तीन चार बार सवेरे कर लिया, तीन चार बार शाम को, दिन में अच्छा स्वमान, तो ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, इनसे वो सब कुछ खत्म होता जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल देखिए, बहुत लोग तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको इसको सफल बनाना है, और ये ऐसी चीज है कि अगर आप इसको जीवन में महत्व दे दें, हर घंटे में बजता है एक मिनट का और तीन मिनट वाले बजते हैं, कम से कम 10 बार तो बजते ही हैं। अगर 10 बार के लिए मन में कोई प्लानिंग लेकर चलें, आप एक प्लान बनाएंगे कि अगले 3 दिन के लिए मुझे हर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजते ही यह अभ्यास करना है, तो फिर आपका वो अभ्यास पूरा सफल हो जाएगा। और ये अभ्यास आप बदलते रहें, 7 दिन के लिए 7 ले लें, उन्हें रिपीट करते रहेंगे, बाबा से योग लगा के सकास देना, एक मिनट के अभ्यास, एक मिनट के गीत में आप 500 रूपों का अभ्यास भी कर सकते हैं, 10-10 सेकंड, और 3 मिनट के अभ्यास में आप सकास देने का प्लान बना सकते हैं। भिन्न भिन्न योग के अभ्यास हैं, उन्हें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब तो बहुत क्वेश्चन आ गए बहन, बस बहुत हो गए भाई, चलो
आप भी कोई प्रश्न ना दे, यही खत्म करेंगे, देखते हैं। भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक कुमार हूँ, बंधन वाला हूँ, परिवार में सब खिलाफ है, ऐसा क्या करूँ कि भविष्य की चिंता या डर न हो?
भविष्य तो अपना भगवान के हाथ में सौंप दें, लेकिन ये याद रखेंगे, जो जितना स्वमान में रहते हैं उनको सबका सम्मान स्वतः ही मिलता है। सम्मान को बढ़ा दें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं, बहुत गहराई से इसको अपनी फीलिंग में लाएं, तो जिस स्वरूप में आप रहेंगे आपके परिवार वाले आपको उसी स्वरूप से देखेंगे। और सवेरे उठ के अब सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करेंगे, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं, और ये सब आत्माएं मेरे सहयोगी हैं, 5 बार ये संकल्प कर लें, वो सहयोगी बन जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। और गुह्य रहस्य ये भी है, जो आत्मा स्वयं को देह के बंधनों से जितना मुक्त करती जाएगी, बाकी सभी बंधन स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे।
मुझे जनरली स्वप्न नहीं आते, परंतु यहाँ आने पर दो रात से नेगेटिव स्वप्न ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक वर्ष पुराने घटनाएं मिक्स्ड है, जिसमें 10-15 वर्ष की पुरानी घटनाएं मिक्स्ड है, जिनमें क्रोध और नफरत अधिक है, जिनमें
ठीक है, समझ गया,
जिन्हें मैं भूल चुका था। कृपया बताइए, मेरा योग गलत तो नहीं लग रहा है?
आपका योग गलत तो नहीं, पर सपने शुरू हो गए आपके यहाँ से। अब इन सपनों को सतो प्रधान बनाना ये आपके हाथ में है। सपने क्या हैं? जो मेमोरी हमने सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं, अब की नहीं जन्म जन्म की, वो नींद में जागृत होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, इसलिए स्वप्ना रहे हैं, न उसको गलत लो, न उसको गलत संदेश समझो। सोने से पहले बहुत अच्छे अभ्यास करके 15 मिनट सो, और संकल्प करो मेरे स्वप्न बिल्कुल सतो प्रधान होंगे, मुझे गहरी नींद आएगी, 5 बार ये संकल्प करो, तो स्वप्न आएंगे भी तो बहुत अच्छे आएंगे, जिससे आपको सुखद फीलिंग होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेमोरी में, स्मृतियों में सब ने बहुत कुछ भरा हुआ है।
अमृत वेले में नहाने के बाद भी बहुत भारीपन रहता है, जबकि निर्मल शाम का योग अच्छा लगता है, अच्छे से हल्के होकर अमृत वेला कैसे करें?
देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, नींद अच्छी ना होती हो, यही सपने बहुत आते हो, साउंड स्लीप ना हो, भोजन भारी हो, पेट अच्छा न रहता हो, एसिड और गैसेज अगर पेट में बनती हैं तो वो ब्रेन पर बुरा असर डालती हैं। कारण तो कई हो सकते हैं, और शाम तक मनुष्य थोड़ा फ्रेश हो जाता है, इसलिए अच्छा योग लगता है, बहुतों का योग शाम को अच्छा लगता है। मैं आपको एक फिजिकल विधि बता रहा हूं, सवेरे नहा धो के 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करो, ये आता है ना सबको, अब तो स्वामी रामदेव जी ने प्रसिद्ध कर दिया ना ये। इससे क्या है, ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, ये वो नहीं बताते, इससे नाड़ी जितनी भी नर्व्स हैं वो शुद्ध होती है, यानी ब्लड कहीं रुका हुआ वो बहने लगेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अगर आप 5 मिनट धीरे धीरे कर लेते हैं तो ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश होंगे आप और योग लगेगा। आप ऐसा जरूर करें कि बैठ के योग न करें, घूम फिर के करेंगे अच्छे अच्छे अभ्यास, कई अभ्यास आप चुन लो और घूम फिर के योग करो तो फिर और भी अच्छा रहेगा।
हम बार बार बोलते हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, पर ये कब होगा और कैसे होगा, ये विनाश कैसे प्रत्यक्ष होगा?
डर जाएंगे आप, रहने दो इस सब्जेक्ट को। हम तो कब से सुनते आ रहे हैं। हमसे पहले वालों ने तो सुना था अगली दिवाली आएगी नहीं, इसलिए बाबा ने ये सब कहा ताकि पढ़ाई का पुरुषार्थ का उमंग रहे। सोचो अगर अब से 85 साल पहले बाबा कह देता था कि अब तो बहुत टाइम पड़ा, तो जितने भी आए थे सब भाग जाते, तो टाइम पड़ा तो फिर आएंगे ना, अगले जन्म में आएंगे, क्या करना है हमें। विनाश की प्रक्रिया धीमे धीमे चलेगी, इसको हम परिवर्तन भी कहेंगे। धरती बदलेगी, देखो आकाश बदलेगा, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा, धरती का जो एक्सिस है जो 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी वो सीधी हो जाएगी, सागर आ जाएगा इधर उधर, कहीं नई भूमि निकल आएगी, बहुत खेल चलना, हम जानते ही नहीं उसको कुछ भी। परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, उसमें ही लोगों को विनाश दिखाई देगा, क्योंकि उस दुनिया के लिए यहाँ की पाप आत्माएं तो जानी ही चाहिए ना, अपने धाम उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं आपको एक रहस्य बता देता हूँ, आप खुद सोचते रहना आगे। बाबा ने कभी एक संदेश में एक गुह्य रहस्य बताया था इसी प्रश्न के उत्तर में कि विनाश कब होगा। जब संसार के सभी लोग भगवान को पुकार कर कहेंगे कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट करो, तब विनाश होगा। अभी कर दे तो लोग कहेंगे ना, इतनी अच्छी दुनिया क्या कर दिया तुमने, बड़े निर्दयी हो। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती जाएंगी, लोग कहेंगे यहां नहीं रहना प्रभु जी, तो शुरू होगा, लेकिन जल्दी नहीं। 10 साल तक ये खेल उथल पुथल का चलेगा, उसके बाद फाइनल होगा और शांति हो जाएगी। ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण दोनों, संसार का हर प्राणी।
मैं कुमार हूँ, 14 साल से प्राइवेट जॉब करता हूँ, 12 घंटा समय उसमें चला जाता है, फिर अपना खाना बनाने में लेकर
समझ गया
सारा सेवा
ये
करना
बहुत
है।
आते हैं कुमारों के प्रश्न, ये बहुत आते हैं। आपको कर्म योगी बनना होगा। खाना बनाने को आप काम क्यों समझते हो? एंजॉयमेंट। गीत बजाओ बाबा के अच्छे अच्छे, कोई क्लास पसंद
भाई जी
हो,
एक और है उस कंटिन्यूएशन में। समर्पित भी होना चाहता हूँ लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता, और कितना समय तक इस सांसारिक कार्य में लगा रहना चाहिए?
ठीक है, अभी स्वीकार नहीं किया जाता तो उचित टाइम नहीं आया है, नहीं तो समर्पित होके भी पछताओगे। इसलिए क्योंकि हर चीज का एक राइट टाइम होता है, सबको सब चीजें सुटेबल नहीं होती संसार में। कोई सोचे समर्पित हो गए तो बस मजा करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। कहीं नए हिसाब किताब आ गए सामने तो, आपको ऐसा साथी मिल गया जो जीने ही न दे तो, कमरे में सोने वाला साथी, खराटे मारने वाला मिल गया, नींद ही नहीं आती, हम तो अपने घर ही अच्छे थे, उससे नहीं। आप जितने भी कार्य करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे काम तो हर मनुष्य कर रहा है ना, वो लोग भी योगी नहीं बन पाए जिन्हें कुछ काम नहीं है। एग्री? बहुत है हमारे, हमने देखे बहुत लोग, कोई काम नहीं लेकिन कोई योग नहीं। योगी वही बनते हैं जिनको योगी बनने की लगन हो। कामकाज, अधिक कामकाज इसमें बाधक नहीं है। काम आप कर रहे तो व्यर्थ से मुक्त हो, बस अपने काम को लाइटली करो, एंजॉय करो, और खाना बनाना, नहाना धोना, काम करना, उसमें कुछ योग के अभ्यास फिक्स कर दो, ये करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको लगेगा नहीं हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, आपको लगेगा ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, वरदान है, हम व्यर्थ से मुक्त हैं और हम अपनी इसी में अच्छी स्थिति बना रहे हैं। ऐसे बहुत कुमार हैं, मैं केवल थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बहुत कुमार ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को इस तरह अच्छा बना चुके हैं। एक उदाहरण देता हूं, किसने मुझे कहा एक घंटा जाने में एक घंटा आने में लगता है जॉब पर, बाइक से आते जाते हैं, दो घंटे तो हमारे वेस्ट ही हो जाते हैं। मैंने कहा वेस्ट क्यों, स्टार्ट करो, बाबा को बुलाओ, बैठ जाओ पीछे, मेरी छत्र छाया बन के रहना, फील करो, हजार बुझाएं मेरे सिर पर फैला दी हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, जहां जा रहा हूं लाइट माइट फैलती जा रही है। उसने शुरू किया, आनंद हो गया, दो घंटे का ही तो योग हो गया हमारा। प्लानिंग करें।
क्या पुरुषार्थ को बताने से नजर लगता है,
लग जाती है कभी?
किसी को बता देने से पुरुषार्थ छूट जाता है?
सबके साथ नहीं होता, पर अपने कुछ ऐसे अनुभव जो बहुत ही सुंदर हों कुछ समय तक गुप्त रखने चाहिए। ये भी राज है कुछ इस ड्रामा का। बताने से नजर लगती है या दूसरों की कुछ दृष्टि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है हमारे लिए, वाइब्रेशंस निगेटिव आते हैं, किसी को ईर्ष्या हो जाए, पर कुछ होता अवश्य है। मेरे को भी ये अनुभव हुए कि कुछ ऐसे अच्छे अनुभव जो बहुत टॉप के थे, जब बता दिए तो दोबारा नहीं हुए, तो मैं सोचा है तो बड़ा खराब हो गया, नहीं बतानी है कुछ चीजें, थोड़ा गुप्त रहने से अच्छा रहता है।
मेरा बेटा जो 21 साल का है उसे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ा हकलाता है, तो वो प्रॉब्लम के कारण वो हमेशा टेंशन में रहता है, उसे कैसे योग करना होगा? एक माँ होने के नाते क्या मैं उससे उसके बदले में योग कर सकती हूँ?
बिल्कुल, आपको ही करना उसके बदले में योग। एक घंटा रोज योगदान करेंगे पर 6 मास, उसके ब्रेन को एनर्जी देंगे, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, हाथ मल के हम सिखाते हैं, क्योंकि ये सब चीजों को ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन को एनर्जी देंगे, चाहे हाथ ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, 2-3 बार करके फिर उसको भी सिखा दें, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इन चीजों के आ गए हैं। हमने बच्चों से कराए, बच्चे तो ठीक हो गए, लेकिन 21 साल की आयु थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी मेहनत करेंगे आप 6 मास, और उसको एक संकल्प दो, एक विजन उसको बता देना कि वो ऐसा चित्र बनाए सोते समय और उठते ही कि मैं एक सभा में खुले दिल से भाषण कर रहा हूं, यानी फ्लुएंटली बोल रहा हूं, अकलाता हूं ही नहीं, तो वो भी काम करेगा और ये दो चीजें भी काम करेंगी।
अगर बाप से कुछ ही समय में आते ही टच में सर्व प्राप्तियां होने लगे तो क्या इसमें हमें बहुत खुश हो घमंड में आ जाना चाहिए?
उत्तर तो इसी में आ गया, नहीं आना चाहिए, बल्कि उस अनुभव को बढ़ाना चाहिए गुप्त रखते हुए।
भाई जी, जिस स्थान पर भीड़ एकत्रित होती है वहां मुझे घुटन क्यों महसूस होती है?
ये सूक्ष्म डर है अंदर में, इसके लिए जब भी उठो 21 बार याद करना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं, और एक स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास कर लो, मैं मास्टर क्रिएटर हूं। तो जहां भी आप जाएं ऐसे और आप देखें 20-30-50 लोग हैं, तो आप संकल्प करो मुझे ऐसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं तो मेरे वाइब्रेशंस का इफेक्ट इन सब पर पड़ेगा, इनका मुझ पर नहीं, मैं मास्टर क्रिएटर हूं।
और उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है, पहाड़े से नीचे देखने पर भी बहुत घबराहट
डर लगता है, ये भी डर है सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ, क्योंकि पहाड़ी से किसी जन्म में गिरने से मृत्यु हो गई है। यही अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं, 21 बार, लेकिन उठते ही पहले 3 मिनट में ही, तो अंदर जो डर भरा हुआ वो निकलता जाएगा।
मैंने बाबा को नहीं ढूंढा पर बाबा ने मुझे ढूंढा है, जब भी बाबा के गीत सुनता हूं आंखों में से आंसू नहीं रुकते, पुरुषार्थी मुझे समझ में नहीं।
ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत भाग्यवान हो, आंसू बहाते रहना प्रभु प्रेम में, प्रभु प्रेम में, दुखों में नहीं।
भाई जी वो कुछ प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए, उसी का है।
पुरुषार्थ समय के कारण नहीं हो रहा है, समय की कमी है, रात में भी काम करना पड़ता है। अच्छा इंजीनियर हैं, बस यही तरीका होता है बिजी लाइफ का, कि बिजी लाइफ में कुछ कर्म योग के अभ्यास जोड़ लो और ये संकल्प बुद्धि से हटा दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम कॉन्शियसनेस जो है मनुष्य को हैवी करती है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ऐसा अच्छा अभ्यास करो कर्म में, घर से चलते हुए, भोजन खाते हुए, पानी पीते हुए, तो ये लाइफ इजी हो जाएगी। मन अगर इजी रहता है तो लाइफ इजी हो जाती है, काम भी इजी हो जाता है। देखो माता खाना बना रहे, आज घर में मेहमान आ गए, पांच आ गए, भाई आए हैं माँ के, अब कितने खुशी में खाना बनाएगी, थकेगी? माताओं का अनुभव है ना, तो जहां इजीनेस है और आनंद है वहां थकान नहीं होती। हमें हर कर्म में ये दोनों चीजें लानी है, आनंद और सरलता। हाँ थोड़े थोड़े पॉजिटिव थॉट्स बता दो तो अच्छा होता है सबको, क्योंकि यही बात है कि अगर मनुष्य कर्म कॉन्शियस बहुत है ना, ज्यादा काम है, इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, तो भारी हो जाता है सबको। लेकिन कर्म को एंजॉय करो, बाइक भी आप चला रहे हैं ना, एंजॉय करो, ये नहीं बहुत फास्ट चला रहे और ध्यान सारा उसी में जा रहा, एंजॉय करो। तो अगर आपको 15 मिनट में पहुंचना है 12 में पहुंच जाएंगे, और आप बहुत फास्ट चला रहे टेंशन से चला रहे तो 15 मिनट के बजाय 16 लग जाएंगे। तो हमारी सरलता, हमारी एकाग्रता समय को बचाती है और सफलता भी दिलाती है। ठीक है टाइम ओवर, चलो योग करके समाप्ति।